सार की 289वीं और 19वीं गाथा और उसके पहले 149वां कलश उसकी उत्थान का के रूप में यहां से अपन को चर्चा आरंभ करनी है। यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अपना समय सार पहली गाथा से कंटिन्यू रूप में चल रहा है और वो यहां तक आया था। थोड़ा विषय कठिन होने की अपेक्षा से सागर शिविर में बंधाधिकार शुरू किया था, तो बंधाधिकार की कुछ गाथाएं हो गई हैं, लेकिन निद्राधिकार की जो बाकी गाथाएं थीं, उन पर ये प्रवचन आरंभ हो रहे हैं, तो उसी क्रम से आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले जब हुए थे प्रवचन, उसमें कौन था और कौन नहीं था पता नहीं, और जो थे भी उन्हें कितना याद रहा होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने प्रकरण मिलाने की दृष्टि से यहां से बात सुनी है, हो सकता है थोड़ा रिपीटिशन इसमें आएगा। और एक प्रवचन प्रत्येक रोजाना 57 मिनट के होंगे, 57। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करूंगा एक आध मिनट कम ज्यादा न हो जाए। और आप ये कहेंगे 57 मिनट का क्या हिसाब, ये विकल्प आ सकता है ना। ऐसा है कि टीवी पे आते हैं सारे प्रवचन और आएंगे भविष्य में, सारी दुनिया देखेगी, तो आध घंटे का प्रवचन अपन आना शुरू हुआ है, तो 2 एपिसोड इसके बनेंगे और एक में 1.5 मिनट भी लोग काट लेते हैं, आगे पीछे की जो बातें देते करते हैं ना। माने नाम 30 मिनट का, लेकिन उसमें 1.5 मिनट कट जाएगा, 28.5 मिनट का टीवी पे आता है, उस हिसाब से 2 एपिसोड के हिसाब से 57 मिनट का होगा। आप लोगों को कोई विकल्प ना हो बीच में, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। अब ये कलश है 149वां, ज्ञानवान सुरसतो पियतः स्यात् सर्व राग रस वर्जनशीलः लिप्यते सकल कर्म भी रेशा कर्म मध्य पतितोऽपि ततो नः। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो। राग रस से तो कितनी सरल है बात कि राग रस से रहित ज्ञानी, राग से रहित नहीं कहा, क्योंकि राग तो 10वें गुणस्थान तक होता है। राग का रस, राग में धर्म बुद्धि, राग में एकत्वमत बुद्धि, राग में इसे करूंगा धर्म हो जाएगा, इसका नाम है राग रस। ऐसी विपरीत मान्यता से ज्ञानी जीव रहित हैं। कितना राग रस से रहित ज्ञानी, ज्ञानी क्या क्या विशेषण दिया रमेश, कि राग के रस से, राग से नहीं, राग के रस से रहित जो ज्ञानी जीव हैं इस भूलोक में, इस पृथ्वी पर, वे कर्म रज से कर्मस्त हों पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं, ये कर्म के बीच में रहते हैं। कालमान वर्ग में भी लोकालोक में भरी है और उनके भी बंध भी उनका है और बंध भी चल रहा, सत्ता में भी है और हृदय में भी आ रहे हैं, तो कर्मस्त है ना, पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं, कर्म में हैं और कर्म रज उन्हें नहीं बनती है। अब जो कर्म विद्यमान है, द्रव्य कर्म, उनके जो उसमें हैं मतलब मौजूद हैं, और जो बंधती नहीं है वो जो मिथ्यात्वादी 41 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता है, वो लगाना। कर्म में कर्मस्त हों पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। बोलो कितनी सरल है, इसमें इतना स्पष्ट हो गया है एक कलश का अर्थ है। मैंने यही कोशिश की है कि इसका अर्थ नहीं बताना पड़े, सबकी समझ में ऐसे आ जाए, उसमें और थोड़ी सी और बात का कोई विचार नहीं रखा, थोड़ी उपेक्षा भी हुई हो, छंद में कोई गड़बड़ हुई हो और भी हुई हो तो हो, लेकिन साधारण मोक्षु जो हमारे ज्यादातर व्यापारी वर्ग में से हैं और जिनको हिंदी साहित्य का इतना गहरा अध्ययन नहीं होता है ना, तो वे उस काव्यत्व के चक्कर में ना फंस जाए। देखा कि ये कलश है और ये उत्थानिका का कलश है। गुजराती में मथालू बोलते हैं, मथालुआ, अपने बोलते हैं हेडिंग। एक जो गाथाओं में जो बात कही जाने वाली है उसको उन्होंने कह दिया। देखो कि राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्त हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। ये ऐसा है, इसमें आपको अन्वय करने की भी जरूरत नहीं है। अन्वय समझते हैं, जब कोई संस्कृत के छंद होते हैं तो उनको जब हम अर्थ करते हैं तो पहले उनका अन्वय करते हैं। आपने देखा नीचे अन्वय अर्थ लिखा रहता है, क्योंकि संस्कृत में बहुत बहुत उत्कृष्ट भाषा होने से बहुत आजादी है कि कर्ता कहां रखो, कर्म कहां रखो, क्रिया कहां रखो, कोई प्रतिबंध नहीं। अंग्रेजी में कहेंगे आई एम, आई के बाद सीधी एम आना चाहिए। यदि हम वो एम नहीं लगाएंगे और पहले ये बता देंगे कि कहां के जबलपुर क्यों, तो फिर वो वाक्य सही नहीं माना जाएगा। तो प्रतिबंध है ना अंग्रेजी में, हिंदी में भी मैं जबलपुर जा रहा हूं तो जा रहा हूं मैं हूं अंत में ही आना चाहिए, मैं हूं जा रहा नहीं कह सकते, है ना। और संस्कृत में कुछ नहीं है, अहम गच्छामि, गच्छामि अहम, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द कहीं भी लगा सकते हैं। और खासकर छंदों के अनुरोध से इस तरह के प्रयोग बहुत होते हैं समास और संधि में, तो उसका अर्थ करने के लिए हरेक को अन्वय लगाना पड़ता है। पहले उसको संस्कृत में ही वाक्य सीधा करो, उसका गद्य बनाओ, उसे बोलते हैं अन्वय, और फिर उसका अर्थ करो। और उसी जो संस्कृत से प्रभावित हिंदी होती है, खासकर ये शास्त्रीय विद्वानों की, प्राचार्य तो सब शास्त्री थे ही, तो उनकी में भी इस तरह का हिंदी में भी ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि जिनमें अन्वय की जरूरत पड़ती है, और अन्वय की आदत होती नहीं हमारी। कोशिश ये की कि इसमें अन्वय किसी को नहीं लगाना पड़े, किसी शब्द को आगे पीछे नहीं करना पड़े, इसको गद्य जैसा भी पढ़ सकें, क्योंकि मेरे जैसे लोग गा के तो पढ़ नहीं सकते, समझिए ना। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या कि राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हो पर कर्म रस से लिप्त होते हैं नहीं, ऐसा भी पढ़ सकें शांति से और सबकी समझ में आ जाए, इस बात का ध्यान रखा है। ये दो गाथाएं एक साथ हैं, है ना। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि दो गाथाओं को एक साथ रखने का क्या प्रयोजन है। ये रखने का प्रयोजन आप क्यों बता रहे हैं? देखो आचार्य ने भी कई गाथाओं को रखा है, दो गाथाएं एक साथ रखी जाती हैं तो उसे युग्मम बोलते हैं, तीन गाथाएं एक साथ रखी जाते हैं तो उसे विशेषकम बोलते हैं, चार से अधिक गाथाएं एक साथ रखी जाती हैं तो उसे कुलकम बोलते हैं। ये संस्कृत के नियम है, लेकिन मैंने जब इसके लिखी ये टीका तो उस वक्त उनमें भी कई गाथाएं जो अलग अलग थी उनको मिला के लिखा। आप ये कहें क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि इनको एक साथ कहने में प्रवचन में सब बात में बहुत सुविधा रहेगी। यद्यपि कुंद कुंद ने तो लगातार ही लिखी थी, उनने तो अर्थ लिखा ही नहीं है, तो मतलब तोड़ा तोड़ी का कोई काम ही नहीं है। अब कौन एक साथ हैं और कौन अलग अलग हैं, 415 गाथा में ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आचार्य ने टीका लिखी तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनके कहीं कहीं विशेष कम बनाए, कुलकम बनाए, जैसे कि अभी अबंधाधिकारी की पांच गाथाएं फिर एक साथ रखी, फिर पांच गाथाएं एक साथ रखी, है ना। तो मैंने अपनी दृष्टि से इनका ऐसा किया है। हो सकता है कि जो दूसरी छपी हो किताब प्रति उसमें ये दो गाथाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, इसलिए यदि इस समस्या से आपको नहीं जूझना है तो एक किताबें आप मेरा प्रवचन हो तब लेके बैठेंगे तो आपको वो सुविधा रहेगी, और नहीं तर आप वो समझ लेना जो मैंने अभी आपको बता दी है, जो भी आपके पास किताब हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम अब गाथाएं पढ़ते हैं, पढ़ो भाई। रानी रागप गत दो गाथाएं भी सरल है ना, वही गाथ जो अभी कलश में कही थी उन गाथाओं में दोहरा दी गई है। पर अमृतचंद्र ने दो दो लाइन की टीका लिखी इन दोनों गाथाओं पर, और उसमें भी दोहराने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये तीनों बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिससे इन पर ज्यादा व्याख्यान नहीं करें तो आप कहेंगे बहुत सस्ती निपटा दी। बात एक ही है और बहुत सीधी और सरल है कि पंक गत ज्यो कनक, कनक माने सोना, और वो कहां कीचड़ में पड़ा हुआ। पंक माने कीचड़, तो पंक गत जिस उदाहरण दे दिया उनने, बस जो कलश में कहा था उसी बात को उदाहरण देकर के उनने समझाया कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना जैसे कीचड़ से लिप्त नहीं होता, माने उसका अलिप्त स्वभाव है। कभी भी आप निकालोगे और उसे ऐसा पानी डालना तो एकदम निर्मल चमकता हुआ सोना निकल जाएगा, लेकिन लोहा यदि पड़ा हो तो उसमें जंग लग जाएगी। वो तो जैसा आपने डाला था वैसा नहीं रहेगा, वो उसका मतलब है कर्म रज से लिप्त हो गया, वो उस कीचड़ से लिप्त हो गया। तो ज्ञानी जन तो राग विरहित, वो राग रहित लिखा था ना, राग विरहित हैं, इसलिए वे कर्म रूपी कीचड़ में पड़े हों तो भी कर्म रज से लिप्त होते नहीं हैं। पर अज्ञानी जन लोहे के समान हैं, क्योंकि वे राग रस से रहित नहीं हैं, इसलिए वे लोहे पड़े होंगे कर्म रूपी कीचड़ में तो उन्हें कर्म अवश्य बंधेंगे। तो इतनी सी बातें कहना चाहते हैं कि ज्ञानियों को बंध क्यों नहीं होता और अज्ञानियों को बंध क्यों होता है। तो उन्होंने कहा क्यों, तो उसने दिया ये अलिप्त स्वभाव, ज्ञानियों का उसमें लिप्त होना स्वभाव नहीं है और अज्ञानियों का उसमें लिप्त होना स्वभाव है। इस स्वभाव माने वो त्रिकाली स्वभाव, दृष्टि का विषय स्वभाव मत लेना, आप समझे ना, क्यों कि वो जो लोहा है उसका स्वभाव ऐसा है कि पानी में रहेगा तो कीचड़ में रहेगा तो जंग लगेगी, और सोने का स्वभाव ऐसा है कि जंग नहीं लगेगी। आप जानते हैं सारे विश्व में सोने की इतनी अधिक कीमत क्यों है? कीमत माने वो कीमत नहीं समझना, कौन सी कि बाजार का जो भाव है 7,000-8,000 मुझे पता नहीं कितना है मेरा मूला का, तो कौन सी कीमत, हम तो व्यापारी लोग उसी कीमत को समझते हैं। हर आदमी संपत्ति के रूप में सोने का कलेक्शन करता है, समझिए ना, क्योंकि एक तो उसे गुप्त रखा जा सकता है, यदि मकान ले लेगा तो सारी दुनिया को दिखेगा कि इसके पास ये संपत्ति है, और एक गुप्त रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हीरे जवाहरात क्यों नहीं रखता कि उसकी कीमत चाहे जितनी हो लेकिन हर जगह उसे भुनाया नहीं जा सकता, उसे बेचना हो तो बंबई में जाना पड़ेगा, सीजन के टाइम पे जाना पड़ेगा, और एक दिन में दो मिनट में नहीं बिक जाएगा। अब हमारी अत्यंत आवश्यकता है, हम एक गांव में फंस गए हैं और अंगूठे में उंगली में हीरे की अंगूठी है, कुछ नहीं आएगी काम। एक सब जेब कट गई, सामान चला गया, खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई जानता पहचानता नहीं है। और यदि सोने की अंगूठी होगी तो उसे तत्काल किसी भी जगह बेच करके खाने पीने की रहने की टिकट की व्यवस्था हो सकती है, माने वो कहीं भी उसको बेचा जा सकता है। दूसरी उसमें एक क्वालिटी है कि जिसकी वजह से उसे लोग रखते हैं, और तीसरी ये है कि ये तुम्हारे बैंक के लॉकर तो आज बन गए हैं और बेबी सुरक्षित कहां है। ये जो जंगल में रहने वाले डाकुओं से आज सुरक्षित होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठे डाकुओं से सुरक्षित तो नहीं हो सकते ना। कब सील कर देंगे और कब हम नहीं निकाल पाएंगे, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो सोने को हमारे पूर्वज जमीन में गाड़ के रखते थे, और उन्हें पता नहीं किसी को कहां गाड़ा है, बताया नहीं। अब वो लोहा रख दें तो साले जंग लग जाए, गल जाए, तो सोना वो जमीन में पड़ा हो, पानी भी पड़ेगा वो, उसमें गीलापन आएगा ना, कहीं भी कुछ भी होगा तो भी वो कुछ बिगड़ेगा नहीं, जब निकालेंगे वैसा ही का वैसा निकल आएगा। ऐसी जो कुछ क्वालिटी है जिसलिए वो किसी काम का नहीं है और उसको सबसे ज्यादा कीमती धातु बन गया है। किसी काम का नहीं है माने ना तो खाने के काम आता है, ना पेट की प्यास बुझाता है, ना खाना बनाता, ना पहनने के काम आता। पहनने में ये पहनने क्या काम है, ये कपड़े पहनने को चाहिए ना, सर्दी बचाने के लिए, गर्मी बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, क्यों, ये गहने से थोड़ी इज्जत बचती है। क्या सिकंदर जी, इसीलिए तुमने सोने का धंधा पकड़ा है। माने वो स्थायी संपत्ति के रूप में आज भी विश्व में और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोना बिकता है, बाजार में आगे सोना बिकता है। जो कुछ नहीं है, शेयर मध्य हो जाए, वहां लगाने में खतरा हो, बाजार मार्केट में जमीनों का गिर रहा हो, ये हो रहा हो, तो कहां बस सोने में खरीद ले और उसे बस गायब कर दो, ये रहता है। अपने यहां आचार्य महाराज ने तो सिर्फ उसका जमीन में, उस जमाने में जमीन में ही गाड़ के रखते थे सब, मेरे माता पिता भी रखते थे, और कभी कभी निकालते थे और बच्चे लोग न देख लें, वो ऐसी कोशिश करते थे, वैसे उसको ऐसे छुपा छुपा के रखते थे, उसके ऊपर कुछ रख देते थे, है ना, उन्हें पता नहीं कि बच्चे सब देख रहे हैं क्या, हम भी समझते कि हमसे छुपा रहे हैं, तो इन्हें ये प्रकट मत हो दो हमने देख लिया है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूं, तब तक सोने को जमीन में गाड़ के रखा जाता था जो मैंने खुद देखा है। अभी इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे अगले जो पंडित आ रहे हैं ना, इनको ये अनुभव नहीं रहेगा, इनने ये कभी नहीं देखेंगे, ये तो लॉकर की बात ही सोचेंगे बस। अब आप समझ रहे ना कि सोने और लोहे का उदाहरण आचार्य ने, क्योंकि वो उस वक्त अति प्रसिद्ध थी बात, और उदाहरण का एक नियम है कि उसे प्रसिद्ध होना चाहिए और सिद्धांत का अप्रसिद्ध होना चाहिए, है ना। अपन ने वो प्रशिक्षण निर्देश का में भी लिखा ना कि हम कहां से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, ज्ञात माने प्रसिद्ध और अज्ञात माने अप्रसिद्ध, तो उसके माध्यम से उन्होंने इतनी बात की। अब जो अपन ने उत्थानिका का कलश था उसमें क्या बात थी, राग रहित ज्ञानी कर्म रस से लिप्त नहीं होते हैं क्योंकि उनका लिप्त होने का स्वभाव नहीं है, कितनी बात थी। गाथा में उनने उदाहरण जोड़ दिया, एक सोने का और एक लोहे का, और टीका में भी इसी उदाहरण को बिल्कुल हूबहू उनने लिख दिया। इस तरह ये दो गाथाएं बिल्कुल सामान्य बात को बताते हैं कि ज्ञानी जन कर्म रज से लिप्त क्यों नहीं होते। और इस पर अमृत चंद्राचार्य ने एक महत्वपूर्ण कलश लिखा है, अब अपन उस कलश पर बढ़ते हैं। इस पर मैं व्याख्यान कर चुका हूं इसलिए जल्दी भी निपटा रहा हूं, बात भी ज्यादा विशेष नहीं है। बोलो पढ़ो। चलो पढ़ो करो जी पद्यानुवाद। कैसे बोले अत्यंत स्पष्ट है कि स्वयं ही हो परनमित स्वाधीन हैं सब वस्तुएं। सारे पदार्थ लोक में छह द्रव्य और अनंतानंत द्रव्य छह तो प्रकार के हैं, वे सब पूर्णतः स्वाधीन हैं और वे स्वयं ही परनमित होते हैं। ये दो बातें क्यों कही? स्वाधीनता से परनमित होने का क्या संबंध है? क्योंकि जो त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी द्रव्य है उसके तो परिणमित होने का सवाल ही नहीं है, तो एक कहां समस्या खड़ी होती है कि दूसरों के द्वारा परिणमित होगा कि अपने द्वारा परिणमित होगा? अपरिणामी में तो ये समस्या ही खड़ी नहीं है। तो ये जो पराधीनता और स्वाधीनता की बात है वो तो परिणमन के संदर्भ में ही है। अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पूर्णता स्वाधीन कहा गया है ना, वो इसीलिए कहा कि वो परिणमन से भिन्न है। पर वो पर्याय से भिन्न बोलते ना अपन, जिसमें परिणमन होता है हमने उस चीज को ही अलग कर दिया दृष्टि के विषय में से, क्योंकि दृष्टि में रखने लायक नहीं है वो। बस दृष्टि का विषय का अर्थ ही ये है कि वस्तु में से हम उसे नहीं निकाल रहे, हम निकाल सकते नहीं, किसकी ताकत है कोई निकाले? फिर तो ये पराधीन हो जाएंगे ना। तो ये कहते हैं स्वाधीन है सब वस्तुएं और स्वयं ही सब परिणमित। सब वस्तुएं स्वाधीन हैं और स्वयं से ही वे परिणमित होती हैं, अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सकें। उनमें जो भी बदलाव पर्याय की दृष्टि से होता है वो भी उनकी पर्यायगत योग्यता के कारण होता है। ये जो महातत्व पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन को प्राप्त हुआ है, अपन इसे जगत के गले आसानी से नहीं उतार सकते। उतार भी कहां पा रहे हैं, मुमुक्षुओं में भी भले ही सब प्रवचन सुन लेते हैं लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल के देखें, क्या आप मानते हैं कि मैं किसी को कुछ परिणमित नहीं कर सकता हूं? देखो विकल्प की लेवल की मैं बात नहीं करता, क्रिया की लेवल की बात नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी जन में वैसी क्रियाएं और वैसे विकल्प देखे जाते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि जो ज्ञानी जन शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, वे भी भरत बाहुबली पे चक्र चलाते देखे जाते हैं और ऐसा बात करते देखे। श्रद्धा के लेवल की बात करता हूं, हम अपने अपनी श्रद्धा को टटोलें, मान्यता को टटोलें, क्या सचमुच हमारे हृदय में ये बात है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता? फिर ये अनंत विकल्प जो करने के और अनंत भय कि कोई मेरा भला बुरा ना कर दे, ये कहां से आए? अनंत भय माने अनंतानबंदी का भय, अप्रत्याख्यान का भय तो रहेगा, प्रत्याख्यान संबंधी भय भी रहेगा, संजनन संबंधी भय भी रहेगा, लेकिन ये बात अनंतानुबंधी माने अनंत भय की बात कह रहा हूं मैं। अनंत भय माने अनंतानुबंधी संबंधी भय। ये जो महातत्व है ये समझने की दृष्टि से बहुत आसान है, सरल कठिन नहीं है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता, इसमें क्या है, क्या समझाए? ये तो समझाना नहीं स्वीकृत कराना कठिन है, ये हमारे चित्त को भी स्वीकृत होना कठिन है। विकल्प के लेवल पर विद्यमान रहे विकल्प बदलने का भी हो, समझ गए ना, और दूसरे मेरे में गड़बड़ न कर दें ऐसा, और कदाचित बाहिक क्रिया भी देखी जा सके कमजोरी के कारण अथवा, लेकिन वास्तव में नहीं है। एक और महासत्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वशक्ति से पर्यायगत योग्यता के कारण होता है, ये बात है ना। और ये वो पर्यायगत योग्यता अनादि से अनंत काल तक की सुनिश्चित है, एक एक समय की, एक एक द्रव्य की, एक एक पर्याय का। अब जितने भी बातें कर्म से संबंधी आए कि कर्म के उदय के अनुसार होता है, समय सार में भी आएंगी, घबराना नहीं। कहें वो आता ना, जीवन मरण और सुख सर्वम सदैव भवति नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवन सुख दुखम। तो वो लिखाते हैं स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने किए गए कर्म के उदय से। मैं दूसरा अर्थ भी करता हूं कि सारी जीवों का परिणमन नियत है और वो स्वकीय, वो स्वयं कृत है, स्वयं कृत नियत है कि ऐसा ऐसा होगा और स्वयं के द्वारा ही किया जाएगा और कर्मोदय उसमें निमित्त होगा। बात वही है, लेकिन उस पर हम ज्यादा वजन दें कर्म के उदय से होता है तो फिर वो एक दिन दूसरे दिन का कर्ता हो गया ना, वो वहां सिद्धांत कहां कायम रहता है। और वो आचार्य महाराज ने वहां किया है, वो तो इसलिए किया है, इसलिए किया है कि हमको तुमको पड़ोसी से राग द्वेष करते हो, भले आदमी वहां से तो हटाए। आज सुबह के व्याख्यान में भी थी ना ये बात कि कर्मोदयात कर्मोदयात, देखो ये लिखा है ना कर्मोदयात, देखो समय साल में लिखा है कर्मोदयात, अमृतचंद ने लिखा है, कुंद कुंद ने लिखा है कि कर्मोदय से होता है, कर्मोदय से होता है। गुरुदेव के प्रवचन पढ़ना, उसमें आएगा कि अपने द्वारा स्वयं के द्वारा होता है और कर्मोदय उसमें निमित्त है। तो ऐसी बात क्यों करते हैं? तो एक तो पड़ोसी से हटाकर कर्म पे लाना है, तो कम से कम इससे राग द्वेष तेरा खत्म हो, फिर कर्म पे आ जाएगा, फिर उससे निपटेंगे। कैसे निपटोगे? क्या निपटेंगे क्योंकि बेटा तू ही ने तो बांधे, ये मुफ्त में थोड़ी आए थे, यदि तू राग द्वेष नहीं करता तो ये कर्म नहीं बनते। तो उसका फिर राग द्वेष पे गुस्सा जाएगा, भाव कर्मों पे। तो ब्रह्म को कहेंगे भैया ये तो अनादिकाल से प्रति समय की पर्यायगत योग्यता है, इस समय जिस जाति का, गुरुदेव की भाषा में कहें जिस भूमिका में इस टाइप का राग आए बिना रहता ही नहीं है। क्यों? कि चक्रवर्ती पद प्राप्त हो, इतना पुण्य का उदय हो, समझे ना, तो उसे दिग्विजय का भाव आए बिना रहेगा नहीं। क्यों? लेकिन भगवान का प्रजन छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था ना। क्यों? हमको तो हमारा प्रजन छोड़ के चला जाए तो एक सेकंड में मिथ्या दृष्टि की उपाधि देने में हमें देर नहीं लगती। वो हमारे पास भरत चक्रवर्ती नहीं होता तो हम आप घोषणा कभी किए बिना रहते ही नहीं। क्यों? कह रहे साहब रुदन छोड़ के नहीं जाता। मैं तो आपसे पूछता हूं कब जाता, आपसे पूछता हूं कि आपसे लाएगा वो तब जाता। अरे प्रवचन तो कितने 1,00,000 पूरब तक चलने वाले थे, उनकी दीक्षा हुई थी ना, तो 84,00,000 पूरब की आयु थी ना, 83,00,000 पूरब 1,000 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। अब वे कब तक चलते? क्यों भैया? अब ये 1,00,000 पूरब तक चलते, 1,000 वर्ष कम। अब 1,00,000 पूरब माने क्या होता है ये हमारे संजीव गोधा से समझ लेना, नहीं तो वो हमारा वो आ गया है क्या नाम विकास, वो बता देंगे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है वो बुक कार्ड बार बार कार्ड करिए गड्ढे बनना। तो कितना कड़ोर है, कितने कड़ोर, कितने लंबे लंबे मैंने, मैं तो इतना बता था बहुत लंबा काल है। क्यों? तो इतने काल रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनकी ध्वनि सुनने वाली है, तो क्या वो इतने बरस के बाद जाते बनने? मैं आपसे पूछता हूं क्या करते सुन तो प्रैक्टिकल सोचने का अपन काम ही नहीं करते हैं। क्यों? अरे भाई कोई नहीं, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो ऐसी भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते ही नहीं है। जैसा वो बाहुबली पर एकदम ऐसा किया, ये तो हमें दिखता नहीं है कि तुम्हें क्या नहीं दिखता है कि चक्र तक चला दिया। अरे नहीं, नहीं नहीं चलाया था, वो तो चक्र को धक्का दिया था। अब हम बहुत तरकीब में निकालते हैं, हम भी निकालते हैं क्या। लेकिन मैं ये कहता हूं भाई साहब, आपको इतना ही ध्यान आता है कि बाहुबली के साथ ऐसा किया था। अरे बाहुबली के साथ किया था तो क्या गजब किया था? क्यों? क्योंकि वो तो सौतेला भाई था, और सौतेले भाइयों से कौन क्या नहीं करता है। सौतेले भाई को कौन चाहता है? तुम्हें उसका गजब लगता है? लेकिन सगे भाई के साथ क्या किया था उसकी बातें नहीं करते हो। सगे मां जाए भी 99 भाई थे उनके, और जो बाहुबली के साथ किया था वो ही उनने उनके साथ किया था, उनकी कोई बात नहीं करता। कह रहे होंगे ऐसे साधारण से लोग, उनसे कह दिया होगा, हो गया अगर निपट गया होगा कि बाहुबली तो बाहुबली था, हमारे ऊपर विराजमान है, सारे देश में विराजमान हो गया, उनको कौन पूछता है 99 को तुम्हारे। क्यों? गांव गांव में विराजमान है बाहुबली, बाहुबली है, और बाहुबली के साथ भरत का भी नंबर लग गया है। जगह जगह भरत भी विराजमान होने लग गए हैं। बढ़िया बढ़िया जोड़ी हो जाती है ना एक परिवार। हिंदुओं में होता है ना राम परिवार का मंदिर अलग, गर्भगृह अलग होता है, कृष्ण परिवार का अलग होता है, शिव परिवार का अलग होता है, ऐसा अपना आदिनाथ परिवार का गर्भगृह अलग होता है। तो नंगे हाथों को तुम गड़बड़ रहे। मजा तो तब आता जब बीच में आदिनाथ खड़े होते और एक तरफ नंदा और दूसरी तरफ सुनंदा। लेकिन क्या करें, वो हम तो दिगंबरों में तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता है। अभी हम सैन फ्रांसिस्को में थे, वहां मंदिर बना है, तो मंदिर में भगवान की 24 ही विराजमान है। तो एक एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, ऐसी चारों तरफ है। तूने गया ना अभी? तो मैंने देखा कि मल्लिनाथ भगवान का किनको मिले, दिगंबरों के श्वेतांबरों को। मेरा ध्यान इस पे गया तो देखा तो भाग्य से वो जो मूर्ति दिगंबर थी, तो अपने दिगंबर थी तो अपने जैसी जैसी होती वैसी सब मूर्तियां थी। तो मैंने वहां सभा में ही प्रश्न किया, बहुत श्वेतांबर भाई भी रहते हैं, मैंने कहा कि यदि ये श्वेतांबरों को मिलता क्या तो ये मूर्ति कैसी बनती हो यहां लगती, मैं ये जानना चाहता हूं। घबराना नहीं, मैं कह रहा हूं, जानता हूं टीवी जाएगा, टीवी पे जाएगा, दुनिया देखेगी सुनेगी, कोई घबराना नहीं। ये तो फैक्ट है, ये जानने को विकल्प आया कि यदि ये मिलते और आखिर उनके यहां जो 24 ही होगी जहां पूरी उनके प्योर मंदिर में, तो वहां कैसी होगी, मुझे आज तक देखने में नहीं मिली है। क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आता, जब वो उनका अकेला हो तो अपन जाने का, यहां तो अपना दिगंबर मूर्ति है तो जाने का बचल पाता है। तो मैं तो साधारण तरीके से कह दी थी बात, एक श्रोता के दिल में वो बात जम गई, तो वो जाने उसने पता लगाया। तो जो उनके पंडित थे ना उनके पास गया कि भाई तुम क्या करते हो, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करते हो। तो उसने गोलम गोल जवाब दिया, ऐसा किया, ऐसा करते। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जानना है कि होता क्या, तो तुम थोड़े तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम तो एक साधारण मतलब जो भी विद्वान हो, लेकिन तुमने थोड़ी कुछ विराजमान करी। तो बोला कि नहीं साहब, विराजमान तो पुरुष जैसी करते हैं, जैसी वर मूर्तियां होती है फिर ऐसी करते हैं। वसंत भाई उसने कहा, मुझे पता नहीं कहीं कैसी और दूसरी जगह कैसी हो, अभी भी हो सकता है अंतर हो। फिर उसने बहस करी कि ऐसा क्यों, जब आप मानते हो कि वो दे तो उसको करने में कि नहीं, वो उससे लोगों को विकृति हो सकती है, मन में विकार हो सकता है क्या। तो कहते तुम्हारा चित्त भी इस बात को स्वीकृत करता है, देखो ख्याल में आई ना कि वो उनकी जैसी मूर्ति बनाना उचित नहीं है, तो उसमें अपने आप सब कुछ आ गया, समझ गया ना। अब कुछ कहने के लिए क्या रह गया है? तो मेरे कहने का आशय ये है कि मालूम वे साधारण लोग नहीं थे जिनकी हमने उपेक्षा की काल में, कि ना तो उनकी मूर्ति बनाई, ना कहीं उन्हें विराजमान करी, और ना कोई कहता है इसके लिए भरत को कोसता है। कौन कौन थे मालूम? एकाध का नाम बताऊं? अरे जो पहले गणधर थे ना वृषभ सेन, वे भी उनमें थे, समझ में आया ना। और सबसे पहले मोक्ष जाने वाले बाहुबली से भी, वे भी उनमें थे। और उनके बेटों में 11 गणधर हुए, कितने हुए 84 में? बहुत से तो उनके बेटों में ही गणधर हुए हैं, तो वे सब थे। और वे सब शिकायत लेकर ऋषभ देव के पास पहुंचे थे कि आप हमें राज दे आए थे, हम उतने में ही संतुष्ट थे, अब ये भरत ऐसा कर रहे हैं, अब हम तो उनके सामने खड़े तो रह नहीं सकते, क्योंकि वे तो 6 खंड को जीत जात के आ गए हैं, इतनी शक्तिशाली हो गए हैं, अब हम करें क्या? क्या ये नहीं कि तुम उन्हें समझाओ? ये किसी ने नहीं कहा कि उन्हें तुम समझाओ, कि हम क्या करें ये बताओ। भगवान को तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिर वो इंद्र आया दौड़ा दौड़ा, एक वो ये अपने आने सल्ला जो हर काम के लिए दौड़ा दौड़ा समस्याओं के समाधान करने के लिए आ जाता है क्या? और उसने कहा कि भगवान कोई जवाब नहीं देंगे, तुम इस झंझट में मत पड़ो, कहते आप बता दो हम क्या करें, हमारे बड़े भाई हैं, स्वीकार कर लो, नहीं वो तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर दीक्षा ले लो, आत्मा का कल्याण कर लो, चले गए दीक्षा लेने। क्या हुआ? उसने ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा अपनी भरत से बात करूंगा फिर कल तुम्हें जवाब दूंगा। क्यों भरत से क्या बात करे? क्यों भरत को क्या समझाए? गुरुदेव के पास आते तो क्या करते हैं? गुरुदेव क्या कहते हैं? भाई ऐसी भूमिका में ऐसा राग आज बिना रहता नहीं है, यही कहते ना। आपने देखा होगा एक कवि ने कहा गया, एक घटना कही, एक लड़की ऊपर खड़ी है, चढ़ गई गाय पे, वो जो होता है गवर्नमेंट के खंभे मम्मे किसी चीज पर चढ़ गई, वो पानी की टंकी पे, और वो वहां से कह रही है कि अब मैं कूद के गिर के मरती हूं, नहीं तो मेरी ये शर्त मानो। ऐसा अखबारों में आता ना, उस कवि ने ये कहा कि ऐसी एक परिस्थिति है, अब ऐसे में ये सब कवि लोग अपनी कविता बनाते तो कैसे बनाते? तो वो कहता है कि मैथिली सेनगुप्त लिखते तो कैसे लिखते, उनने उसने 4 पंक्तियां बना दी, दिनकर लिखते तो कैसे लिखते बना दी, सुरेंद्र शर्मा लिखता तो कैसे लिखता। उसमें सब कवियों की स्टाइल में उस एक घटना का चित्रण आपकी समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख दिया कि वो वीर रस वाला ऐसा कहता, ओंकार भर के श्रृंगार रस वाला ऐसा करता, हे वाले इतनी बढ़िया सुंदर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, और बैराग रस वाला क्या कहता, वो सब उन्होंने अपने भी। एक लड़के ने ऐसा कुछ प्रयोग किया था हमारे विद्यालय में कि ये यदि प्रकरण चल रहा होता और इस पर यदि गुरुदेव श्री प्रवचन करते तो वे कैसा करते, तो उसने 2 मिनट करके बताया। फिर कहा युगल जी करते तो कैसा करते, तो उसने वो बताया। फिर कहा डॉक्टर भारेले करते तो कैसा करते, उसने ये बताया। हो सकता उत्तम चंद जी का भी बताया हो। ऐसा प्रयोग एक दफे किया था अपने विद्यालय में किसी ने, मैंने वो सबकी स्टाइल का गहराई से अध्ययन करके और उस विषय पर कौन आदमी किस तरह से रिएक्ट करता उसको वो समझ गए, मन कितना गहरा अध्ययन कर लेते हैं। तो ऐसी है कि भाई ये घटना है, घटना तो बदली नहीं जा सकती, वो तो इतिहास की है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी हो गई, उसमें हमारे हाथ में कुछ है नहीं। क्यों? लेकिन यदि कोई सलाह लेने आता तो कोई भी ज्ञानी जन ये नहीं कहता, ऐसा मैं बात करके देखता हूं भरत से, मान जाए तो अच्छा है, क्यों फिर मैं कल आना मेरे पास, ये नहीं कहता। वो तो जो कुछ कहना होता वो उसी वक्त कहता, और उसका सार मुलब्बा ये होता कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। यानी वस्तु का स्वरूप है कि भाइयों कहते कि ये भूमिका में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है, ये समझ लो। तभी भारत के देश में प्रधानमंत्री का एक ही पोस्ट है ना, क्यों? अब एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ और उसके सगा भाई खड़ा हो जाए, क्या करे वो? बोलो क्या करे? मैं आपसे पूछता हूं, उसी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसे खड़ा किया, उसका हाथ में बहुमत है, अब वो क्या कहे सामने के सामने भाई भाई आ जाए? तो अपनी पार्टी वालों को समझाए कि भैया तुम आधा आधा ऐसे बना दो, इसे गृहमंत्री बनाने का आश्वासन दे दो, कुछ कर सकता है वो? क्या करेगा बोलिए, कोई कोई क्या सलाह देगा उसे? कुछ नहीं बताए तो हो, जो भी होता है, जो भी संगमान जैसी हालत हो, जैसी जिसकी हुई हो, तेरी तू जाने मेरी मैं जाने, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकते, यही तो होगा ना। तो वस्तु का स्वरूप की बात है ना, तो मैं आपसे कह रहा था कि अनादिकाल से जो हमारा स्वरूप है, अरे कर्म भर्म कहां से आया, ये तो अभी बना है, कल का कि 70 कोड़ा कौड़ी सागर तक का बनता है, 70 कोड़ा कौड़ी कौन से अनंत काल के सामने क्या है, और वो तो मिथ्यात्व की बात है। ये मिथ्यात्व की बात कहां कर रहा है, इसे तो सुरंग में रख की बात करनी है। क्यों? सुरंग नरक तो 33 सागर ही है, और अभी कहां हो रहा है 33 सागर? कोई जाता है 33 सागर में? ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ये कर्म कितनी सी बात करता है, अरे हमारे कर्म के उदय में आया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये कर्म का बंध जो तेरे को हुआ था और वो उदय में आया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी कर्म बंधे, अंतर मुहूर्त का आवाधा काल पड़े और अंतर मुहूर्त में उदय में आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब वो इस कर्म की वजह से हुआ, लेकिन भाई साहब वो होना तो अनादि से नक्की था ऐसा, तो वो कर्म भी उसके अनुसार बंधेगा, कर्म उससे बाउंड है, कर्म से वो बाउंड नहीं है। कर्मोदय से हुआ ना, कहते ना कर्मोदय कर्मोदय कर्मोदय, अब हम रोजी ना कर्मोदय कर्मोदय रटते रहते हैं। मैं आज सबसे बोलूं क्या कहना, भैया हमारे पाप कर्म का उदय होगा इसलिए ऐसा हो गया, हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा इसको उसका ऐसा हो रहा है, बस ये कोई नहीं सोचता कि अनादिकाल से कि जो परम तत्व गुरुदेव श्री ने बताया है क्रमबद्ध पर्याय का, वो लोग किसको विकल्प आता है, कितना आता है, इस प्रयोजन की गद्दी पे छोड़ देना। हम भी श्रद्धा के लेवल तक, अभी विकल्प बात में श्रद्धा की बात करता हूं, ये जब तक विकल्पात्मक श्रद्धा में ये वज्र जैसा निर्णय नहीं होगा, विकल्पात्मक श्रद्धा में पक्का, तब तक वो अनुभव की तरफ जाने ही वाला नहीं है, आत्मा की तरफ त्रिकाली की तरफ उपयोग जाने ही वाला नहीं है, वहां अनुभव होने ही वाला नहीं है, तुम सोचिर के हो जाना कि वो तो अनुभव के बाद आएगा ना मैं, अरे पहले आएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, देशना लब्धि में आएगा, नहीं तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, वो प्रायोग लब्धि में भी नहीं जाएगा, प्रायोग में भी चला गया तो लौट के आ जाता ना। जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो मैं तो एक ही जवाब देता हूं कि भैया हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हमें हुआ नहीं, तो दो बातें तुम्ही ने कह दी कि प्रयत्न किया और हुआ नहीं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एक दफे उसे तो देखो, कि तुम्हारे विकल्पात्मक ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बारे में सम्यक निर्णय हुआ है कि नहीं। दुनिया का ये नियम है कि जब कोई गणित का हम सवाल करते हैं किताब में से, तो अपना उत्तर को मिलान करके उत्तरावली से देखते हैं क्यों, और फिर ये निर्णय करते हैं कि मेरी विधि में कोई गलती है, करते कि नहीं करते, और 10 दफे उसको करते हैं, फिर भले ही हमारे दिल में ये विकल्प उठ जाए कि कहीं किताब में उत्तर तो गलत नहीं छप गया, कि पहली दफे ये विकल्प उठ जाता है कि उत्तर तो गलत नहीं छप गया। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो तत्व ज्ञान आया है, यदि वो सम्यक निर्णय हो जाए एक दफे विकल्पात्मक ज्ञान में, तो अगले क्षणों में अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर उस ज्ञान को निर्विकल्प होना ही चाहिए, पर वो नहीं होता है तो इसकी जांच होना चाहिए। सचमुच 99.9% गड़बड़ यही है, ये बहुत और ना भी सही कहीं भी होगी, लेकिन हमारा बस तो सिर्फ इसमें ही चल सकता है। तो मेरा तेरा काम तो तत्व का निर्णय करना है, तू तो अपने उपयोग को तत्व का निर्णय करने में लगा, और बाकी काम तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया का है, वो होना होगा हो जाएगा। अभी इतनी कह दो भाई, फिर जब तेरे को जो होना होगा वो हो जाएगा, जब होना होगा जब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जब मैं करूंगा, वो उसमें भी मैं पुरुषार्थवादी हूं, ये तुम हमें भागबाजी की कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना पुरुषार्थ करना तत्व निर्णय में क्या, मैं तो आत्मा के अनुभव का प्रसुद्ध करूं, तत्व निर्णय करते हुए सारी जिंदगी बीत गई क्या। ये आदिनाथ भगवान का महापुराण नहीं लिखा होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, समय साथ नहीं समझा सकते थे दुनिया को। क्या मतलब कहना चाहता, क्या कहना चाहता हूं मैं, कि हमें वो 4000 वर्ष तक प्रवचन सुनने नहीं आया, इस बात की सिद्धि में तो वो हमें मिलता ही है, लेकिन उन्हीं का सग्गा भाई जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, किनको, ऋषभदेव को, तो उस दिन से लेकर कितना 1000 वर्ष कम 1 करोड़ पूरब तक कि एक दिन 1 मिनट को जिसने व्याख्यान नहीं सुना उसका कोई नाम बता सकता है, सुना मैंने क्या कहा है? 1 मिनट को भी व्याख्यान नहीं छोड़ा, इन्हें 60,000 वर्ष को छोड़ा, ये नाम अपने पास हो गया ना, 1 मिनट को नहीं छोड़ा, बोलो दिलीप भाई है कोई, अरे वही वही भरत का सग्गा छोटा भाई बिशप सेन, उनका पहला गणधर है, उसके बिना तो कोई केवल दिव्य ध्वनि छूटती नहीं है, तो पहले प्रवचन से शुरू किया और अंतिम प्रवचन तक हाजिर रहा कि नहीं आए, उसकी हाजिरी के बिना तो होता ही नहीं है, बोलो अब ये क्या काम कहा जतीश भाई, वो भरत चक्रवर्ती तो अपने प्रवचन से छुट्टी लेने के काम आ गया क्यों अब ये किस काम का है, ये इस काम का है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको तो तत्व ज्ञान हो गया, हमने तो सब समझ लिया गुरुदेव श्री से, और हम तो उन्हें साक्षात सुना है, और हमने तो खूब अध्ययन करके निर्णय कर लिया, हमें सुनने की क्या जरूरत है, तो मैं पूछता हूं उनने नहीं किया होगा, उनने नहीं समझा होगा, उन्हें जरूरत होगी रिसेप्शन को, अरे वो द्वादश अंग के पास ही होते हैं, वे मन पर ज्ञान के धनी होते हैं क्या, जिस जनमानी में द्वादश अंग की रचना वो करते हैं ना, वो सब पहले से जानते हैं। एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, सब लोग मन में उत्तर देना, बोलने मत लग जाना, नहीं तो मेरा प्रवचन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या बात कर रहा हूं कि गौतम स्वामी के गुरु कौन थे, उन्हें देशना लब्धि मिली होगी ना, उन्हें तो उन्हें देशना लब्धि किससे मिली थी, सम्मान हुआ ना उन्हें, वो गीत मिथ्यात्व में थे ना रे भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो उनके मिथ्यात्व में तो किसी को शंका नहीं है, गीत मिथ्या दृष्टि से जब इन शोधन बिंदु उन्हें लेने गया था, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि उनके गुरु कौन थे।
ऐसा प्रश्न करते हैं, भगवान महावीर उनके गुरु थे, वो कौन गुरु था? सारी दुनिया के दिमाग में एक उत्तर आता है फटाफट, कम
सोचो। मैं इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं, भगवान महावीर उनके गुरु नहीं थे, ये भगवान महावीर के शिष्य नहीं थे।
क्या कह रहे, हम तो उन्हें पहला नंबर लगाया है उनके शिष्यों में, तुम उनको ही क्रॉस लगा रहे? हाँ लगा रहे, बोलो।
क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि तो जब खिली कि जब उन्हें मन पर ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, वे द्वादश अंग के पाठी हो गए, मुनिराज हो गए, तब तो वे गणधर बने और तब गणधर की उपस्थिति हुई, तब खिली।
तो उनका उपदेश उन्होंने कहां सुना था उसके पहले सम्मान होने में? बोलो।
तब वो साहब मानस सम को देख लिया, मानस सम ने उपदेश दिया था। हाँ साहब, तो मौन उपदेश देता है, पत्थर भी मौन उपदेश देता है, क्यों तो हो जाता होगा ना, फिर गुरु से सुनना चाहिए, वे बात खत्म है ना, पत्थर भी मौन उपदेश दे देता होगा ना, क्या है, क्या कहना चाहते हो? कम से कम गौतम स्वामी के गुरु तो नहीं थे, क्योंकि जब उनको सम्मा दर्शन हुआ तब उनका एक अक्षर दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी, तो उनके दर्शन से हो गया होगा, तो दर्शन भी नहीं हुए थे, फिर पहुंचे कहां थे समूसरण में? अभी ये तो मानस समय के पास खड़े थे, तो मानस समय के दर्शन से होता होगा। अभी अभी मेरे पास एक बहन आई कि पंडित जी मुझे तो मंदिर के साथ मानस सम्मा अवश्य बनाना है। क्यों बहन? अरे गौतम स्वामी को उससे ही हो गया था, बोले तो अब मेरी कोई, हम कहां सोचते हैं इस बात को कि वो सब पहले ही हो गया, आप उनने वहीं सम्मान हो गया, सम्मान ज्ञान हो गया, फिर उनने दीक्षा ले ली तो उनका गुणस्थान बढ़ गया, फिर छठवां सातवां हो गया, फिर उसमें बराबर इतने अंदर अंदर गए कि जिससे उन्हें मन पर ज्ञान हो गया, क्यों? और वो द्वादश अंग के पाठी हो गए, पढ़ के हुए थे क्या? ना तो उनने पढ़ा था और ना उनने सुना था। जो बोला किससे सुना था, कौन सी किताब पढ़ी थी, बोलो। एक भाई ने कहा क्यों तुम्हारा नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो सम्मा दर्शन नहीं होगा? कहा हो जाएगा, क्योंकि जब तक तो नए चक्र नहीं लिखा गया था तब तक भी सम्मा दर्शन होता था। खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा समय साथ नहीं पढ़ेंगे तो सम्मा दर्शन होगा कि नहीं होगा? तुम समय सार के इतने गीत गाते हो, उसकी छुट्टी करना चाहते हो? अरे मैं भी समय सार वाला ही हूं, तो समय सार जब नहीं लिखा गया था तब भी बहुत सम्मानित हो गए थे। बात तो मूल मुद्दे की है, और इससे इन ग्रंथों की महिमा कम नहीं होती। ये ग्रंथ महान है, तुम इनसे छुट्टी क्यों लेना चाहते हो? क्या करोगे उस जिंदगी में? क्या है इससे बढ़िया और काम? क्यों आपका वजन कब खत्म होगा? क्यों बता दिया ना? नहीं 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 नहीं, हो गया ना, हो गया ना। अरे भाई मैं पूछता हूं कि अभी ये तुम सुन रहे हो ना अशोक, अब इससे बढ़िया कौन सा काम करने वाले हो बताओ तो मुझे, जिसके लिए तुम्हें ये वजन के समाप्त होने का इंतजार है, बोलो बताओ, क्या समझना है? ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट पूज गुरुदेव के प्रताप से हम लोगों को ये तत्व ज्ञान मिल गया है सचमुच। वास्तव में हमारे अंदर में उत्कृष्ट जाति की वो पात्रता नहीं है कि जो ऐसे तत्व ज्ञान को पचा सकें और उसमें उससे इतनी गंभीरता आ जाए हमारे जीवन में कि जिसे हमारे जीवन में कोई हल्की बात दिखाई देना दे नहीं, समझे ना, हल्की बात दिखाई नहीं दे लौकिक बातों के आधार पर। तो ये महानता इस चीज की है, ये अरबों लोगों में से कितने लोगों को ये चीज उपलब्ध है, इसके भाग्य की महिमा सकरचंद जी दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसकी कीमत हम करें, गंभीरता से विचार करें, इसके सामने और कुछ नहीं है, सारा जगत तुच्छ है, कोई चीज कहना इन्हें ये तो होनी चाहिए, इज्जत तो होनी चाहिए, इसमें कौन बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, नहीं 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 वो तो होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इसके सामने वो तो समय सारा उत्तरम किंच नास्ति, इस समय सार से महान इस जगत में और कुछ नहीं है। अम्बे चंद्राचार्य देव ने ये बहुत स्पष्ट शब्द में कहा है, ये जगत का अक्षय चक्षु है, हम इसकी महिमा करें, उस तत्व ज्ञान को गहराई से अपने जीवन में उतारें, सम्यक तत्व निर्णय करें और अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करके अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।